आगे सबक देखिए भाई, वलिल मुर्तहिनी तलबुदैनी ही मिन राहिनी ही फ इन्नहू ला यस्कुतु बिर्रहनी तलबुद्दैन व हब्सुहु बिही अय हब्सुर्रहनी बिद्दैन व हब्सुर्रहनी ही बाद फस्ख अक्दिही हत्ता यक्बिज दैनहू औ युब्रिअहू फ इन्नहू ला यब्तुलु इल्ला बिर्रद्दि अला वज्हिल फस्ख लिअन्नहू यब्का मज़मूनन मा बक़ियल क़ब्ज़ु वद्दैन। अच्छा भाई, रहन का बाप चल रहा है तो आगे बतला रहे हैं, वलिल मुर्तहिनी तलबुदैनी ही मिन राहिनी ही। आपने किसी से कर्जा लिया, तवज्जो है, आपने किसी से कर्जा लिया और उस कर्जे के बदले आपने उसके पास अपनी गाड़ी बतौर रहन के रखवा दी, तो क्या गाड़ी रहन के तौर पर रखवाने के बाद अब वो मुर्तहिन आपसे अपने कर्जे का मुतालबा कर सकता है या नहीं कर सकता? कहते हैं क्यों नहीं, मुतालबा वो अब भी आपसे अपने कर्जे का मुतालबा कर सकता है, रोज आपके सर पर आकर सवार हो जाए कि भाई आपने इस तारीख का वादा किया था, वो तारीख गुजर गई है, अब मुझे मेरा कर्जा अदा कर दो। तो लिहाजा कोई चीज किसी के पास रहन रखवाने का ये मतलब नहीं है कि वो आपसे आकर मुतालबा ही नहीं कर सकता। तो कहते हैं वलील मुर्तहिनी तलबुदैनी ही मिन राहिनी ही, और मुर्तहिन के लिए जायज है तलबुदैनी ही कि वो अपने दैन का मुतालबा करे, मिन राहिनी ही किससे, अपने राहिन से। फइन्नहु ला यस्कुतु बिर्रहनी तलबुदैनी, क्योंकि देखा फा आई और इसका तर्जमा किसके साथ मैं कर रहा हूं, क्योंकि इल्लत बयान करिए, फइन्नहु ला यस्कुतु बिर्रहनी तलबुदैनी, क्योंकि रहन की वजह से देन का तलब जो है वो साकित नहीं होती, देन का मुतालबा साकित नहीं होता कि फिर मुतालबा ही ना कर सके, ऐसा नहीं है, बल्कि फिर भी मुतालबा कर सकता है। नीज वह हब्सुहु बिही, इसका आतफ है पीछे तलबु देनी ही पर है, केवल इल मुर्तहिनी हब्सुहु बिही, और ये जमीरें किसको राजे, हब्सुहु की हा जमीर किसको राजे, बतला दिया आगे, अय हब्सुर रहनी बिही की जमीर किसको राजे, बतला दिया बिद्दैनी, हब्सुर रहनी बिद्दैन, तो यानी कि मुर्तहिन के लिए जायज है हब्सुर रहनी कि वो रहन को रोक ले, बिद्दैनी किसकी वजह से, दैन की वजह से। ओहो, ये किताबत की गलती है, हब्सुहू की हाज अमीर जो है ये रहन को, रहन नहीं भाई, राहिन है, राहिन हब्सुर राहिनी बिद्दैनी, मुर्तहिन के लिए हक है क्या भाई, अगर यही इबारत रखें, मुर्तहिन को हक है हब्सुर रहनी रहन को रोकने का, बिद्दैनी किसके बदले, दैन के बदले, भाई रहन को तो उसने पहले ही रोका हुआ है, फिर क्या माना रहन को रोक सकता है भाई, दरअसल यहां राहिन है, राहिन, और हब से मुराद है जेल में डलवाना, कैद करवाना, मुर्तहिन को हक है हब्सुर राहिनी कि वो राहिन को कैद करवा सकता है, बिद्दैनी किसकी वजह से, दैन की वजह से। भाई एक शख्स ने दूसरे से कर्जा लिया और उसके पास अपनी गाड़ी रहन रखवा दी और मुकर्ररा तारीख आ गई, अब वो दैन अदा ही नहीं कर रहा, तो मुर्तहिन बार बार जाकर उससे मुतालबा करता है कि मेरा कर्जा अदा कर दो, आपने एक महीने का वादा किया था, वो तो वक्त पूरा हो चुका है, लेकिन वो टाल मटोल करता है, जैसे आजकल है भाई, लोग बिला वजह दूसरों को तकलीफ देते हैं, टाल मटोल करते हैं, तो वो फिर काजी के पास जाकर इस राहिन को जेल में भी डलवा सकता है कि इसके पास माल मौजूद है लेकिन फिर भी ये मेरा कर्जा अदा नहीं कर रहा। बात समझ में आ गई, यह माना है वह हब्सुहु बिही अय हब्सुर राहिनी बिद्दैनी, और मुर्तहिन को यह हक है कि वो कैद करवा दे राहिन को दैन की वजह से। वह हब्सुर रहनी ही बाद फस्ख अक्दिही हत्ता यक्बिज़ दैनहु औ युब्रिअहु। सूरत मसला यह भाई कि एक शख्स ने दूसरे के पास गाड़ी रहन के तौर पर रखवाई और उससे कर्जा लिया था 10 लाख भाई, बाद में इन्होंने आपस में अक़्दे रहन को फसख कर दिया, क्या किया, दो चार दिन बाद फिर मुलाकात हुई और उन्होंने आपस में इत्तेफाक से उस अक़्दे रहन को फसख कर लिया, तो अक़्द क्या हो गया, फसख हो गया, लेकिन अभी गाड़ी अभी भी मुर्तहिन के पास है, तो क्या मुर्तहिन अब गाड़ी वापस करने का पाबंद हो गया कि अब वो वापस करेगा हर हाल में बगैर कर्जा वसूल किए? कहते हैं नहीं भाई, अभी भी उसके लिए जायज है, वो क्या कर ले, गाड़ी को अपने पास रोके रखे यहां तक कि वो क्या कर दे, देन अदा कर दे, या ये उसको कर्जा ही माफ कर दे। दो ही सूरतें ना कर्जे के खत्म होने की, या वो अदायगी कर दे, या कर्जा जिसका है, जिसका माल है वो कर्जा ही माफ कर दे, तो फिर तो इस सूरत में फिर उसको गाड़ी वापस करना पड़ेगी। लेकिन उससे पहले चाहे अक्द रहन फसख ही क्यों ना कर दे, उसके लिए जायज है कि उस रहन को अपने पास रोके रखे। सूरत समझ में आ गई? तो कहते हैं वह हब्सु रहनी ही, और मुर्तहिन के लिए जायज है रहन को रोकना, बाद फसख अक्द ही, बाद इसके कि जबकि अक्द रहन को फसख कर दिया, हत्ता यकबिज़ा दैनहू औ युब्रिअहू, यहां तक कि वो अपने दैन पर कब्जा कर ले, औ युब्रिअहू, या उसको माफ कर दे, बरी कर दे। फइन्नहु ला यब्तुलु इल्ला बिर्रद अला वजहिल फस्ख, इसलिए क्योंकि जो रहन है ये बातिल नहीं होता मगर यह कि वापस कर दिया जाए, अला वजहिल फस्ख, किस तरीके पर, फस्ख के तरीके पर। भाई जब तक गाड़ी मुर्तहिन के पास है जुबानी कलामी बेशक आकदे रहन को फसख कर दें, जब तक गाड़ी उसके हवाले नहीं कर देगा फसख के तरीके पर, तब तक रहन फसख ही नहीं हुआ, क्योंकि रहन ताम किससे होता था, कब्जे से, तो टूटेगा भी किससे, फसख भी किससे होगा, जब कब्जा खत्म करके गाड़ी उसके हवाले करेगा। वैसे जुबानी कलामी बेशक फसख कर भी दें, जब तक गाड़ी उसके पास है तो गोया अक्द रहन मौजूद है, वो उसको रोक सकता है। बात समझ में आ गई? ये माना है फइन्नहु ला यब्तुलु इल्ला बिर्रद अला वजहिल फस्ख, इसलिए क्योंकि अक्द रहन जो है वो बातिल नहीं होता यानी खत्म नहीं होता मगर यह कि वापस कर दिया जाए रहन को फसख के तरीके पर, लियन्नहु यबका मजमूनन, इसलिए क्योंकि वो रहन जो है यानी मरहून जो है वो मजमून होकर ही बाकी रहेगा, मा बकी अल कब्ज़ु व दैन, जब तक कब्जा और दैन बाकी है। मुर्तहिन के पास क्या है, गाड़ी, तो गाड़ी पर उसका कब्जा है, तो जब तक गाड़ी पर कब्जा है उसका और राहिन के जिम्मे देन है, तब तक ये रहन ये मरहून क्या रहेगा, उसके पास मजमून रहेगा, क्या रहेगा, यानी उसके जमान में रहेगा। ये माना है लियन्नहु यबका मजमूनन मा बकी अल कब्जु व दैन, इसलिए क्योंकि ये मरहून जो है ये मजमून रहेगा, मजमून होकर बाकी रहेगा जब तक इसका कब्जा और देन बाकी है। लल इंतफाउ बिही, हां मुर्तहिन के लिए जायज नहीं है अल इंतफाउ बिही, रहन से फायदा उठाना, नफा उठाना, जो चीज राहिन ने उसके पास बतौर रहन के रखवाई है उससे फायदा उठाता है, मसलन वो गाड़ी को चलाना शुरू कर देता है, उसका इस्तेमाल शुरू कर देता है, तो ये रहन से फायदा उठा रहा है और रहन से फायदा उठाना जायज नहीं है। तो कहते हैं लल इंतफाउ बिही, उससे फायदा उठाना जायज नहीं है, बे इस्तेखदामिन, ये बात तस्वीरिया है, सूरत बतला रहे हैं किस तरह नफा उठाएगा, बे इस्तेखदामिन, बस सूरत खिदमत लेने के, मसलन रहन कोई गुलाम है या बांदी है, इसने उसे खिदमत लेना शुरू कर दी, घर के सारे काम करवा रहा है उससे, वला सुकना, और ना ही रिहाइश, इसी तरह नफा नहीं उठा सकता रिहाइश का भी, मसलन उसने इसके पास घर रहन रखवाया है, इसने उस घर में रिहाइश रख ली है, वला लुबसिन, और ना ही पहनने का मसलन उसने इसके पास कोई कपड़ा रखवाया था और इसने उनको पहनना शुरू कर दिया, उनसे फायदा उठा रहा है, वला इजारतिन, और ना ही इजारे पर, इजारे का यानी उसने इसके पास कोई गाड़ी रखवाई थी, इसने वो गाड़ी किराए पर आगे दे दी, या इसने वो घर किराए पर किसी को दे दिया, वला इआरतिन, और आरियतन भी नहीं दे सकता किसी को, इस आरियत का फायदा भी नहीं उठा सकता। आरियत कहते हैं किसी को इस्तेमाल के लिए कोई चीज दे देना, मसलन आपका साथी आपके पास आया कि मुझे मोटरसाइकिल की जरूरत है, आपने अपनी मोटरसाइकिल उसको इस्तेमाल के लिए दे दी बगैर उजरत के, उजरत हो फिर वो इजारा बन जाएगा, किराया बन जाएगा, बगैर उजरत के वैसे ही अपने साथी को गाड़ी दे दी, मोटरसाइकिल दे दी इस्तेमाल के लिए, इसको इआरा कहते हैं, यानी इस्तेमाल के लिए किसी को कोई चीज देना। और याद रखो ये अमानत के हुक्म में होती है, ये चीज उसके पास अमानत है, और अमानत किसके पास हलाक हो जाए तो जमान नहीं आता, लिहाजा वो आपकी मोटरसाइकिल लेकर गया और वो मोटरसाइकिल गुम हो गई तो उस पर जमान नहीं आएगा। सूरत समझ में आ रही है? लेकिन यह जरूरी है कि उसने तअद्दी न की हो, ज्यादती न की हो। आजकल लोग उमूमन ज्यादती करते हैं, अपनी चीज का तो ख्याल रखते हैं, दूसरे की चीज का जरा भी ख्याल नहीं रखते भाई। तो बेशक वो दूसरे को पता ही ना चले, फिर भी इंदल्लाह ये मुजरिम है भाई। अगर इसने ज्यादती की है तो इंदल्लाह मुजरिम है। तो दुनिया में बेशक वो तो उसका दोस्त छोड़ देता है, वो समझता है शायद इसने कोई ज्यादती नहीं की, लेकिन उसे पता नहीं कि इसने तो मोटरसाइकिल जानबूझकर ऐसी जगह खड़ी की थी और बगैर ताला लगाए खुली छोड़कर चला गया था। ये तो खुद ही गोया किसी के चोरी के लिए छोड़ना है एक चीज को, तो इस सूरत में उस पर जमान आएगा भाई। तो कहते हैं लल इंतफाउ बिही बिस्तिखदामिं वला सुकनम वला लुबसिं वला इजारतिं वला इआरतिं, और मुर्तहिन के लिए जायज नहीं है रहन से नफा उठाना इस खिदमत लेने की सूरत में, खिदमत की सूरत में, और ना ही रिहाइश की सूरत में, और ना ही पहनने की सूरत में, वला इजारतिन और ना इजारे पर यानी किराए पर देने की सूरत में, वला इआरतिन और ना किसी को इस्तेमाल के लिए देने की सूरत में, यानी किसी तौर पर भी उसके लिए उसे नफा उठाना जायज नहीं है। जबकि बाज उलमा फरमाते हैं कि अगर राहिन इजाजत दे दे तो मुर्तहिन के लिए उस चीज से फायदा उठाना जायज है। अगर राहिन इजाजत दे देता है इस्तेमाल की, फिर नफा उठाना जायज है भाई। लेकिन आम उलमा फरमाते दुरुस्त नहीं है, इसलिए क्योंकि ये रिबा बन जाता है, रिबा सूद। सूद आपने कर्जा दिया है ना, उसने रहन क्यों रखवाया? उसने कर्जा दिया था तो इसलिए इसने रहन रखवाया, अब ये उस रहन से फायदा भी उठा रहा है। तो कुल्लु कर्जिन जर्रा नफान फहुआ रिबा, हर वो कर्जा जिससे नफा उठाया जाए वो क्या है? रिबा है। तो देखो इसका कर्जा भी इसको वापस मिलेगा और इस चीज को भी जब तक इस्तेमाल में ला रहा है उसका भी फायदा उठा रहा है, तो ये जायद फायदा है, लिहाजा ये क्या हो गया? रिबा। रिबा जबकि बाज दूसरे फुकाहा जो फरमाते हैं कि जायज है अगर राहिन इजाजत दे दे तो फिर मुर्तहिन उससे फायदा उठा सकता है, वो फरमाते हैं कि फिर ये इआरा बन जाएगा। क्या बन जाएगा? इआरा यानी इस्तेमाल के लिए कोई चीज उसको दे दी है, वो उसको इस्तेमाल कर रहा है कुछ अरसे के लिए, लेकिन इआरा के अंदर तो फिर जमान नहीं आता भाई। अभी मैंने जाब्ता बतलाया कि आरियतन किसी को इस्तेमाल के लिए कोई चीज दी जाए तो फिर उस पर जमान नहीं आता भाई। तो कहते हैं इनमें से कोई फायदा मुर्तहिन उनसे नहीं उठा सकता। वह हुआ मुतअद्दिन लौ फअला, और मुर्तहिन तअद्दी करने वाला होगा लौ फअला अगर उसने ऐसा किया। तअद्दी यानी ज्यादती करने वाला है, मुर्तहिन अगर क्या करता है रहन से फायदा उठाता है तो वो ज्यादती करने वाला है। और याद रखो कि आपको मैंने बतलाया कि अमानत में दूसरे पर जमान नहीं आता, जैसे इआरा भी क्या था, दूसरे के पास अमानत थी वो चीज, आपने मोटरसाइकिल किसी को इस्तेमाल के लिए दी तो वो मोटरसाइकिल उसके पास बतौर अमानत के है और अमानत में किसी पर जमान नहीं आता। लेकिन अगर अमानत में भी कोई तअद्दी करे ज्यादती करे तो उसका जमान उस पर आता है। लिहाजा अगर यहां पर भी मुर्तहिन रहन में तअद्दी करता है, उसको इस्तेमाल करता है, उसे फायदा उठाता है तो यह तअद्दी कर रहा है और तअद्दी की सूरत में यह जालिम हुआ और इस पर फिर पूरा जमान आएगा। अब अकल नहीं जमान आएगा बल्कि उस चीज की पूरी कीमत का जमान आएगा। तो कहते हैं वह हुआ मुतअद्दिन लौ फअला, और वो तअद्दी करने वाला यानी ज्यादती करने वाला होगा अगर उसने ऐसा किया यानी फायदा उठाया। वला यब्तुलु रहनु बिही ऐ बितअद्दी, और रहन बातिल नहीं होता इससे यानी कि तअद्दी से, ज्यादती से रहन बातिल नहीं होता, वो चीज अभी भी उसके पास रहन के तौर पर ही है लेकिन अब जमान पूरा पूरा आएगा। व इदा तलब दैनहु उमिर बि इहज़ारि रहनिही فَإِنْ أَحْزَرَهُ سَلَّمَ كُلَّ دَيْنِهِ أَوَّلًا ثُمَّ رَهْنَهُ وَإِنْ طَلَبَ فِي غَيْرِ بَلَدِ الْعَقْدِ إِلَّمْ يَكُنْ لِلْرَهْنِ مُؤْنَةُ الْحَمْلِ وَإِنْ كَانَ سَلَّمَ دَيْنَهُ بِلَا إِحْزَارِ رَهْنِهِ۔ صورت یہ کہ دین کا وقت پورا ہو گیا، جو وقت مقرر کیا تھا اس نے کیا کہا تھا، مثلا میں دو ماہ بعد آپ کے یہ پیسے آپ کو لوٹا دوں گا، और अपनी गाड़ी उसने रहन रखवाई थी। तो अब 2 माह के बाद मुर्तहिन आया और उसने मुतालबा किया कि लाओ भाई मेरा देन मुझे वापस कर दो, मेरा देन मुझे लौटा दो। तो कहते हैं तो उसको भी हुक्म दिया जाएगा कि तुम भी रहन को हाजिर करो। क्या करो? रहन को हाजिर करो, लेकर आओ, क्योंकि जब तुम कर्जा वसूल करोगे तो तुम पर भी लाजिम होगा कि मुझे मेरी चीज वापस लौटाओ। तो उस वक्त उसको लिहाजा हुक्म दिया जाएगा। सूरत समझ में आ रही है? तो कहते हैं वह ईदा तलबा दैनहु, और जब मुर्तहिन मुतालबा करे अपने दैन का, उमीरा भी एहजारी रहनी ही, तो उसको भी हुक्म दिया जाएगा अपने रहन को हाजिर करने का। काजी के पास चला गया ना, काजी कहते हैं के पास जाकर मुतालबा करता है कि मेरा कर्जा इससे दिलवाया जाए, तो काजी भी इससे क्या कहेगा कि तुम भी रहन हाजिर करो, ये कर्जा देगा तो तुम रहन दोगे। फइन अहजरहु सल्लम कुल्ल दैनहु अव्वलन सुम्मा रहनहु। सूरत ये कि इसने रहन हाजिर कर दिया और उसने दैन हाजिर कर दिया काजी के पास, तो किसको कहेंगे कि वो पहले हवाले करे? क्या रहन पहले राहिन को दे दिया जाएगा या पहले दैन लेकर मुर्तहिन को दिया जाएगा? कहते हैं भाई पहले दैन लेकर मुर्तहिन को दे दिया जाएगा और फिर रहन लेकर राहिन को दे दिया जाएगा। भाई ये क्या वजह है, दैन क्यों पहले दिया अदा किया जाएगा और रहन बाद में क्यों अदा किया जाएगा? कहते हैं इसलिए क्योंकि रहन जो है, देखो तवज्जो से सुनो, क्योंकि रहन जो है वो तो मुतायन है। मसलन जैद ने अपनी गाड़ी मुर्तहिन के पास रखवाई है और जैद ने 10 लाख रुपया कर्जा लिया है। जब इसने 10 लाख रुपए हाजिर कर दिए और मुर्तहिन ने गाड़ी हाजिर कर दी, अब गाड़ी तो जैद की मुतायन है, जैद का हक यह है कि यह गाड़ी इसको वापस मिल जाए, और मुर्तहिन का हक भी तो क्या होना चाहिए, मुतायन होना चाहिए। और वो क्या है, वो 10 लाख उसने सामने रखे हैं, तो सामने रखने से भी वो मुतायन नहीं होते क्योंकि ये समन है, ये दिरहम और दीनार मुतायन नहीं होते जब तक इनकी अदायगी न की जाए। तो एक का हक तो है मुतायन, दूसरे का हक अभी भी मुतायन नहीं है, और तायीन तब आएगी जब वो उस पर कब्जा कर लेगा। चुनाचे ये 10 लाख देगा, उसने मुर्तहिन ने अब उस 10 लाख पर कब्जा कर लिया, अब उसका देन अब मुतायन हो गया कि इसको पैसे वापस मिल गए। तो राहिन का हक क्या था, मुतायन था, मुर्तहिन का हक अभी भी मुतायन नहीं है, तो लिहाजा जरूरी है कि उसका हक भी मुतायन होना चाहिए, तो पहले उसको पैसे दे देंगे। आप कहेंगे भाई ये पैसे कैसे नहीं मुतायन होते, उसने 10 लाख सामने लाकर रख दिए हैं, अब तो मुतायन हो गए, अब इसने यही वाले तो देने हैं वापस। नहीं भाई, अभी भी नहीं मुतायन, वो ये वाले 10 लाख के नोट हटा दे और दूसरे 10 लाख लाकर यहां पर रख दे तो कोई उसको रोक सकता है? नहीं रोक सकता। देखा, मालूम हुआ उसका हक अभी भी मुतायन नहीं है। तो कहते हैं फइन अहजरहु, बस अगर वो रहन को हाजिर कर दे मुर्तहिन, सल्लमा तो सुपुर्द कर देगा वो राहिन कुल्ल दैन ही, मुर्तहिन के पूरे दैन को, पूरा दैन सुपुर्द करना जरूरी है। अगर वो 1 रुपया भी रोक लेता है तो मुर्तहिन को हक है पूरे रहन को रोक ले अपने पास। जब तक वो मेरा 1 रुपया भी वापस नहीं करोगे तब तक तुम्हें गाड़ी नहीं मिलेगी, क्योंकि उसने वो रहन रखा ही किस लिए था, अपने दैन को पूरा पूरा वसूल करने के लिए। इसलिए कहा सल्लमा कुल्ल दैन ही, वो राहिन सुपुर्द कर देगा मुर्तहिन का पूरा दैन अव्वलन पहले, सुम्मा रहना हो फिर वो उसका रहन जो है वो सुपुर्द कर देगा उसके। या यूं पढ़ लें फइन अहजरहु, बस अगर मुर्तहिन वो रहन को हाजिर कर दे तो सुल्लिमा कुल्लु दैनिही अव्वलन, पहले उसका पूरा दैन क्या किया जाएगा, सुपुर्द किया जाएगा, सुम्मा रहनुहु फिर उसके रहन को सुपुर्द किया जाएगा। वह इन तलबा फी गैरी बलदिल अक्दी इल्लम यकुन लिर्रहनी मुअनत हमलिन। सूरत ये कि मुर्तहिन ने किसी दूसरे शहर में देन का मुतालबा किया राहिन से, दोनों रहने वाले हैं लाहौर के, और ये देन का मुतालबा मुर्तहिन इस्लामाबाद में करता है राहिन से। वहां मुलाकात होती है और 2 माह गुजर चुके हैं, वक्त पूरा हो चुका है। अब मुर्तहिन राहिन से कहते हैं लाओ भाई मेरा देन सुपुर्द कर दो, मेरा देन सुपुर्द कर दो। और जब देन का मुतालबा करेगा तो उस पर भी क्या जरूरी है कि रहन को हाजिर करे, काजी के पास ले गया ना, तो इस पर भी क्या जरूरी है रहन को हाजिर करे ताकि पता तो चले रहन भी इसका है या रहन तबाह हो चुका है, वो पहले चोरी और हलाक हो चुका है। अगर वो हलाक हो चुका है फिर तो ये वसूली कर चुका है, फिर ये दोबारा किस चीज की वसूली कर रहा है, लिहाजा अब उसको भी क्या कहा जाएगा कि रहन हाजिर करो। लेकिन इस वक्त तो वो दूसरे शहर में है, तो क्या वहां पर भी इससे यह मुतालबा किया जाएगा कि रहन को हाजिर करे? कहते हैं भाई देखा जाएगा, अगर रहन ऐसा है जिसको एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल करना मुश्किल है, उसमें मशक्कत है, उस पर खर्चा वगैरह होता है, फिर तो इसे मुतालबा नहीं किया जाएगा। मसलन गाड़ी है, गाड़ी अगर इस्लामाबाद लेकर जाएगा उस पर तो अच्छा खासा खर्चा होगा, तो इस सूरत में उसे मुतालबा नहीं करेंगे। लेकिन अगर रहन जो है वो ऐसी चीज है जिसके एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल करने पर कोई खर्चा ही नहीं होता, जैसे उसके पास उसने हीरे की अंगूठी रखवाई थी, अब ये हीरे की अंगूठी तो लाहौर से इस्लामाबाद मुंतकिल करने पर कोई खर्चा नहीं, ये तो क्या कर सकता था, मुर्तहीन अपने साथ भी ले जा सकता है। सूरत समझ में आ गए, लिहाजा इस सूरत में अगर उस रहन की के मुंतकिल करने में कोई मशक्कत ना हो तो इस सूरत में दूसरे शहर के अंदर भी मुर्तहीन जब देन का मुतालबा करे तो उसे रहन के हाजिर करने का मुतालबा किया जाएगा कि वो रहन हाजिर करे, और अगर मशक्कत है उसके मुंतकिल करने में फिर ये मुतालबा नहीं होगा कि रहन हाजिर करे। तो कहते हैं वह इन तालबा फी गैरी बलदिल अक्दी, वह इन वो, ये वो वसलिया है और ये इन इसका तर्जमा अगरचे के साथ करते हैं, ये इन क्या, ये इन क्या है, ये इन वसलिया है और इसका तर्जमा अगरचे के साथ करते हैं। तो कहते हैं वह इन तलबा फी गैरी बलदिल अक़दी, अगरचे वो तलब करे फी गैरी बलदिल अक़दी, अक़द के शहर के अलावा में, अक़दे रहन एक शहर में हुआ था और तलब कर रहा है दूसरे, तो ये अगरचे और इस व इन तालाबा इसका ताल्लुक है उमीरा भी ए हजारी रह नहीं, तवज्जो है इबारत पे जरा नजर रखें, व इन तालाबा अगरचे वो तलब करे इसका ताल्लुक किससे है, उमीरा भी हजारी रह नहीं, अब सारी इबारत को जोड़ो जरा, व इजा तालाबा दैना हो और जब मुर्तहीन अपने दैन का मुतालबा करे उमीरा भी हजारी रहनी ही तो उसको भी रहन के हाजिर करने का हुक्म दिया जाएगा। वह इन तलबा फी गैरी बलदिल अक़दी, अगरचे उसने मुतालबा किया हो अक़द के शहर के अलावा में फिर भी मुतालबा किया जाएगा, इल्लम यकुन ले रहनी मुअनत हमलिन, अगर रहन के मुअनत कहते हैं मशक्कत को, हमल कहते हैं बोझ बारबरदारी, अगर रहन के बारबरदारी की मशक्कत हो, रहन को एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल करने उठाने में क्या हो मशक्कत हो, तो हमल का माना उठाना ले जाना, वह इनकाना और अगर उसमें मशक्कत है, वह इनकाना और अगर उसके मुंतकिल करने में मशक्कत है, यह है शर्त सल्लमा, यह है जजा, तो सल्लामा दैनहू बिला इहजारी रहनी ही, तो फिर वो दैन सुपुर्द करेगा उसको बगैर रहन के हाजिर करने के। बात समझ में आ रही, यानी गाड़ी है, गाड़ी को तो इस्लामाबाद ले जाने पर खर्चा आता है, तो इस सूरत में फिर अब काजी मुर्तहिन को ये नहीं कहेगा कि गाड़ी इस्लामाबाद लेकर आओ, बल्कि वहीं पर राहिन से कहा जाएगा कि दैन इसके हवाले कर दो। हां अगर उसको यह शक है कि पता नहीं मेरी गाड़ी ठीक है या तबाह हो चुकी है, तो फिर इस सूरत में मुर्तहिन को कसम दी जाएगी, भाई मुर्तहिन को कसम दी जाएगी कि वो कसम उठाए कि उसकी गाड़ी हलाक नहीं हुई, ठीक हालत में है। अब मैंने आपको क्या बतलाया कि दैन भी हाजिर कर दिया राहिन ने और मुर्तहिन ने गाड़ी हाजिर कर दी, रहन हाजिर कर दिया, तो कौन पहले सुपुर्द करेगा, देन पहले सु, वही बयान करने लगे, कहते हैं इन नमायु सल्लमु दैनु अव्वलन, देन जो है वो पहले सुपुर्द किया जाएगा, लितायीन हक्किल मुर्तहिनी, ताकि मुर्तहिन का हक मुतायन हो जाए। لتعيين حق المرتهن، مرتهن کے حق کو متعین کرنے کے لیے، کما ذکر فی البیع، جیسے کہ بیع میں ذکر کیا گیا کہ ان الثمن یسلم اولا لهذا المعنی، کہ سمن جو ہیں وہ سپرد کیے جاتے ہیں پہلے، لهذا المعنی، اس سبب کی وجہ سے. یہاں یہ لفظ معنی آیا، اس معنی کا یہاں پر ترجمہ کریں گے سبب اور علت. سبب اور یاد رکھنا بھائی، فقہ کی کتابوں میں معنی کا لفظ سبب اور علت کے معنی میں عام استعمال ہوتا ہے. بھائی دیکھیے، بیع کے باب میں بھی آپ نے کسی شخص سے کوئی چیز خریدی، ایجاب و قبول ہو گیا. مثلا آپ نے اسے کہا یہ گاڑی میں نے آپ سے 10 لاکھ میں خرید لی، اور اس نے کہا میں نے قبول کیا. ایجاب و قبول کرتے ہی آپ اس گاڑی کے مالک بن گئے، گاڑی کے مالک بن گئے. لیکن اب وہ اس گاڑی کو روک سکتا ہے جب تک آپ سمن اس کے سپرد نہیں کرتے. تو وہاں پر بھی بیع کے اندر بھی جب بیع ہوئی ہو تو پہلے سمن سپرد کرنے پڑتے ہیں. کیوں؟ اسی لیے کیونکہ مشتری کا حق تو متعین ہو گیا، یہ گاڑی اس کی ہو گئی، یہ اب اس کا حق متعین ہو گیا، لیکن بائے کا حق بھی تو متعین ہونا چاہیے کہ وہ پیسے اس کو پیسے، اور پیسے تو متعین ہی نہیں ہوتے جب تک ادائیگی نہ کرے. تو اس لیے وہاں کہا جاتا ہے پہلے وہ سمن کی ادائیگی کرے گا اور اس کے بعد پھر وہ مبیعہ اس کے حوالے کرے گا. یہ معنی ہے کما ذکر فی البیع، جیسے کہ بیع میں ذکر کیا گیا کہ ان الثمن یسلم اولا، کہ سمن جو ہے اس کو پہلے سپرد کیا جائے گا، لہذا المعنی، اس علت کی وجہ سے، اس سبب کی وجہ سے، تاکہ وہ متعین ہو جائے اس کا حق بائے کا. وقوله، اور مصنف کا قول متن میں جو آیا تھا، وَإِن طَلَبَ، کہتے ہیں متصلن بما سبقا، یہ ما قبل سے متصل ہے، اس سے جڑتا ہے. وہو قوله، اور وہ مصنف کا یہ والا قول ہے، امیر بی احزار رہنی ہی، اس کے ساتھ یہ متعلق ہے. عبارت سمجھ میں آگئے کہ اس کو حاضر کرنے کا حکم دیا جائے گا اگرچہ دوسرے شہر میں ہو. ایؤمر باحضار الرهن، یعنی اس کو حکم دیا جائے گا رہن کو حاضر کرنے کا. وان کان طلب الدین فی غیر بلد العقد، اگرچہ دین کا جو مطالبہ ہے وہ عقد رہن کے شہر کے علاوہ یعنی کسی دوسرے شہر میں ہو. وهذا الحکم، اور یہ والا جو حکم ہے، وهو الامر باحضار الرهن فی غیر بلد العقد، کہ رہن کو حاضر کرنے کا حکم عقد کے علاوہ کسی دوسرے شہر میں، جس شہر میں عقد رہن ہوا تھا اس شہر کے علاوہ کسی دوسرے شہر میں، یہ جو رہن کو حاضر کرنے کا حکم ہے، انما یثبتو، یہ ثابت ہوگا، ان لم یکن للرہن مؤنت الحمل، اگر رہن کے باربرداری کی مشقت نہ ہو، اس کو منتقل کرنے کی مشقت نہ ہو. حتی ان کان للرہن مؤنت الحمل، اگر رہن کی منتقل کرنے کی، اٹھانے کی مشقت تھی، یعنی اس کا اٹھانا پر خرچہ آتا تھا، تو سلم دینہ بلا احضار الرہن، تو اس مرتہن کے دین کو سپرد کر دیا جائے گا بغیر رہن کے حاضر کرنے کے. صورت اچھی طرح سمجھ میں آ گئی. ولا يكلف مرتهن طلب دينه باحضار رهن وزع عند عدل، جی وہ جو میں ضابطے بتلاتا ہوں وہ لگاتے جاؤ بھائی، بہترین ترجمہ ہوگا بھائی. دیکھو اب اس عبارت میں، ولا يكلف مرتهن، اور مکلف نہیں بنایا جائے گا مرتهن کو، طلب دينه، مرتہن نکرہ آیا، اور اس کے بعد طلبہ فعل آیا، نکرہ کے بعد فعل آیا تو کیا بنتا ہے؟ صفت، موصوف صفت بنتے ہیں، اور موصوف صفت کا ترجمہ کس سے کرتے ہیں؟ موصوف سے پہلے ایسا یا ایسی کا لفظ لے آؤ. ولا یکلف مرتہن، اور مکلف نہیں بنایا جائے گا یعنی حکم نہیں دیا جائے گا ایسے مرتہن کو، طلب دینہ، جس نے اپنے دین کا مطالبہ کیا ہے. کس چیز کا مکلف نہیں بنائیں گے، کس چیز کا حکم نہیں دیں گے؟ بی احضار رہن، رہن کے حاضر کرنے کا. رہن نکرہ آیا، اور اس کے بعد وزع فعل آیا، پھر وہی موصوف صفت بنیں گے، اس کو حکم نہیں دیا جائے گا ایسے رہن کے حاضر کرنے کا. وزع عند عدل، جس کو رکھا گیا تھا کسی عادل آدمی کے پاس، کسی عادل. بھئی دیکھو، رہن جیسے اپنے پاس مرتہن رکھ سکتا ہے، مثلا دیکھو زید نے عمر سے قرضہ لیا، عمر نے کہا کہ میرے پاس بطور رہن کے کوئی چیز رکھواؤ، زید نے اس کے پاس اپنی گاڑی بطور رہن کے رکھوا دی۔ تو جس سے دین لیا ہے اس کے پاس بھی رہن رکھوایا جا سکتا ہے، اور کسی تیسرے آدمی کے پاس بھی رہن رکھوایا جا سکتا ہے، کسی تیسرے قابل اعتماد کے پاس۔ مثلا زید نے قرض مانگا اس سے، اس نے کہا میرے پاس اپنی گاڑی رہن رکھو، اس نے کہا میں آپ کے پاس تو رہن نہیں رکھ سکتا گاڑی، ہاں بکر کے پاس میں رہن رکھوانے کو تیار ہوں۔ اب بکر نیک آدمی ہے، اس پر دونوں کا اعتماد ہے، چنانچہ زید نے قرضہ تو عمر سے لیا لیکن رہن کس کے پاس رکھوا دیا؟ بکر کے پاس، بکر کے پاس۔ تو یہ عدل ہے، عادل آدمی یعنی قابل اعتماد آدمی ہے۔ اب بکر جو ہے یاد رکھیے وہ تیسرا شخص ہے، اب اس کے پاس صرف زید چلا گیا کہ میں نے قرضہ ادا کر دیا ہے اب میری گاڑی سپرد کر دو، یا صرف عمر چلا گیا کہ گاڑی مجھے دے دو اب میرے حوالے کر دو۔ صورت سمجھ میں آئی؟ تو یاد رکھیں وہ جو عادل آدمی ہے وہ کسی کے حوالے بھی گاڑی نہیں کرے گا، نہ اکیلے زید کے نہ اکیلے عمر کے، دونوں آ جائیں گے تو پھر گاڑی ان کے حوالے کر دے گا، دونوں آ جائیں گے تو پھر گاڑی ان کے، کیونکہ ہو سکتا ہے ایک آدمی آتا ہے اس نے پتہ نہیں ادائیگی کی ہے یا ادائیگی نہیں کی، تو لہذا دونوں جب حاضر ہو جائیں گے جن کے درمیان عقد رہن ہوا تھا تو پھر گاڑی ان کے، وہ رہن ان کے سپرد کر دے گا۔ اب صورت یہ کہ زید نے عمر سے قرضہ لیا ہے اور گاڑی کس کے پاس رکھوائی؟ بکر کے پاس۔ اب عمر نے زید سے مطالبہ کیا کہ میرا قرضہ ادا کرو، قاضی کے پاس چلا گیا۔ اب عمر سے قاضی یہ مطالبہ نہیں کرے گا کہ گاڑی لے کر آؤ، کیونکہ گاڑی تو اس کے اختیار میں نہیں ہے، اس کے قبضے میں نہیں ہے، گاڑی تو کس کے قبضے میں ہے؟ تیسرے عادل آدمی کے قبضے میں ہے۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ تو حاصل کلام یہ کہ مرتہین جب دین کا مطالبہ کرتا ہے تو قاضی اس کو بھی حکم دیتا ہے کہ رہن کو حاضر کرو، لیکن اگر وہ رہن کسی تیسرے آدمی، تیسرے عادل آدمی کے پاس رکھوایا گیا ہے تو اس صورت میں قاضی اس کو رہن کے حاضر کرنے کا حکم نہیں دے گا، کیونکہ یہ اس کے اختیار میں نہیں ہے، وہ تو تیسرے آدمی کے پاس ہے چیز۔ اسی طرح یاد رکھو زید نے اپنی گاڑی مثلا عمر کے پاس ہی رہن رکھوا دی، اور پھر بعد میں زید نے اس کو کہا کہ بھئی میری گاڑی آپ بیچ دیں فلاں کے ہاتھ اتنے پیسوں میں بیچ دیں، چنانچہ عمر نے زید کی طرف سے وہ گاڑی کسی تیسرے آدمی کو فروخت کر دی، صرف ایجاب و قبول کر لیا، بیع کا معاملہ کر لیا، لیکن ابھی سمن وصول نہیں ہوئے، گاڑی اس نے بیچ دی مثلا نا، گاڑی بیچ دی، گاڑی اس نے دے دی اس آدمی کو، لیکن ابھی سمن وصول نہیں ہوئے۔ اب عمر قاضی کے پاس چلا گیا کہ قاضی صاحب اس نے میرے پاس اپنی گاڑی رہن رکھوائی تھی اور اس نے مجھ سے 10 لاکھ قرضہ لیا تھا، وہ گاڑی تو میں نے اس کے کہنے پر بیچ دی، گاڑی لے گیا وہ بائے لے گیا، اب میرا قرضہ اس سے دلوا دیں، میرا قرضہ اس سے قاضی، اور وہ جو زید ہے وہ کہتا ہے قاضی صاحب اس کو کہیں گاڑی کے سمن حاضر کرے، پہلے گاڑی رہن تھی اب کیا ہے گاڑی بیچ دی ہے تو اس کے سمن اب یہ حاضر کرے، اب وہ اس کے پاس رہن ہے وہ مجھے واپس کر دے، میرے تو قرضہ دے دوں گا۔ تو یاد رکھیے اس صورت میں جو اس نے گاڑی کو بیچا ہے، خود بیچا یا راہن کے حکم سے بیچا؟ راہن کے حکم سے بیچا ہے، اور کیا اس نے ابھی سمن پر قبضہ کیا ہے؟ جی ابھی تو اس نے سمن پر قبضہ نہیں کیا، لہذا جب سمن پر قبضہ نہیں تو اس کو سمن حاضر کرنے کا حکم بھی نہیں دیا جائے گا۔ ہاں اگر یہ سمن پر قبضہ کر چکا ہے تو پہلے گاڑی رہن تھی اب گاڑی کے سمن اس کے پاس بطور رہن کے ہیں، تو اس صورت میں اس کو قاضی حکم دے گا کہ وہ سمن حاضر کرو، اپنا دین لو اور سمن زید کو دے دو۔ صورت سمجھ میں آ گئی؟ تو کہتے ہیں ولا یکلف، کلف یکلف تکلیف کا معنی ہے کسی کو کسی بات کا مکلف بنانا، کوئی کسی بات کا پابند بنانا، کیا بنانا؟ پابند بنانا، کسی کو کوئی حکم دینا اس پر لاگو کرنا۔ تو کہتے ہیں ولا یکلف مرتہن طلب دینہ، اور مکلف نہیں بنایا جائے گا یعنی حکم نہیں دیا جائے گا ایسے مرتہن کو جس نے اپنے دین کا مطالبہ کیا ہے، उसको हुक्म नहीं दिया जाएगा। बे एहजारी रहने वुज़िअ इंदा अदलिन, ऐसा रहन हाजिर करने का जिसको रखा गया है किसी आदिल आदमी के पास, काबिल एतमाद आदमी के पास। वला समनी रहनिन बाअहुल मुर्तहिन बि अम्रिही हत्ता यकबिज़हू, और इसी तरह मुकल्लफ नहीं बनाया जाएगा मुर्तहिन को। इस ये वला सामानी रहनिन, इसका आतफ है पीछे जो आया था ना बी एहजारी रहनिन, इस रहन पर इसका आतफ है। तो रहन को हटाएं और इसकी जगह रख दें मुकल्लफ नहीं बनाया जाएगा बी एहजारी सामानी रहनिन, किसको हाजिर करने का, रहन के समन को हाजिर करने का उसको मुकल्लफ नहीं बनाया जाएगा। और फिर रहन नकेरा है और उसके बाद बाहू फेल आ रहा है, और नकेरा के बाद फेल है तो उसके लिए क्या बनता है, सिफत। तो वो मौसूफ सिफत में फिर ऐसा या ऐसी का लफ्ज लाते हैं, देखो अब कितना तर्जमा बेहतरीन हो जाएगा, और ना ही उसको मुकल्लफ बनाया जाएगा ऐसे रहन के समन को हाजिर करने का, बाअहुल मुर्तहिन जिसको मुर्तहिन ने बेचा था, भी अमरी ही राहिन के हुक्म से, उसका भी हाजिर करने का मुकल्लफ इसको नहीं बनाया जाएगा। हत्ता यकबिज़हू, यहां तक कि वो उस समन पर क्या कर ले, कब्जा कर, जब कब्जा कर लेगा फिर इसको मुकल्लफ बनाएंगे कि अब वो समन लेकर आओ, और जब तक कब्जा नहीं किया तो तब तक उसको मुकल्लफ भी नहीं बनाएंगे। बात समझ में आ गई। ऐ इन अमर राहिनुल मुर्तहिना बिबै रहनिही फबाअहू, यानी अगर हुक्म दिया राहिन ने मुर्तहिन को बिबै रहनिही कि वो उसके रहन को क्या कर दे, बेच दे, फबाअहू मुर्तहिन ने उस रहन को बेच दिया, फइल्लम यकबिज़ समना, अगर उसने समन पर कभी कब्जा नहीं किया तो ला युकल्लफु बि हज़ारिस समनी, तो इसको मुकल्लफ भी नहीं बनाया जाएगा, इसको हुक्म भी नहीं दिया जाएगा उस समन को हाजिर करने का। इदा तलबा दैनहू, जब ये अपने दैन का मुतालबा करे। वह इन कबजा समना, और अगर इसने समन पर कब्जा कर लिया है तो युकल्लफु बि हज़ारी ही, तो फिर इसको मुकल्लफ बनाया जाएगा उस समन के हाजिर करने का। मसला अच्छी तरह समझ में आ गया। वला मुर्तहिनु माहू रहनुन तमकीनहू मिन बैही हत्ता यकजिया दैनहू। वला मुर्तहिनुन माहू रहनुन, और इसका अर्थ वो पिछले मुर्तहिन पर है, अई वला युकल्लफु मुर्तहिनुन, तो ना ही मुकल्लफ बनाया जाएगा ऐसे मुर्तहिन को, माहू रहनुन जिसके पास क्या है जी, रहन है। भाई देखो मुर्तहिनुन आया नकेरा, और नकेरा के बाद माहू रहनुन, ये पूरा जुमला आया माहू रहन, माहू है खबर मुकद्दम और रहनुन है मुब्तदा मुअख्खर, अई रहनुन माहू, उस रहन उसके पास है, देखो पूरा जुमला है रहन उसके पास। और देखो अभी मैंने आपको जाब्ता बतलाया था, नकेरा के बाद फेल आए तो वो उसके लिए सिफत बनता है, और किस तरह सिफत बनता है, बराह रास्त या पूरा जुमला फेलिया बनकर फिर सिफत बनेगा, पूरा जुमला फेलिया बनेगा, फेल अपने फाइल नाई फाइल वगैरह से मिलकर जुमला बनेगा, और जुमला बनकर फिर वो उस नकेरा की सिफत बनेगा। तो गोया जुमला सिफत बना नकेरा की, इससे मालूम हुआ जुमला किसके हुक्म में, नकेरा के हुक्म में, चाहे जुमला फेलिया हो चाहे जुमला इस्मिया। तो यहां पर भी माहू रहनुन ये मुब्तदा और खबर हैं, ये मिलकर ये जुमला इस्मिया हुआ। तो नकेरा के बाद जुमला इस्मिया आ गया, नकेरा के बाद फेल आए तो वहां नकेरा के बाद जुमला फेलिया आ गया, वहां क्या आ गया, नकेरा के बाद जुमला फेलिया। तो जब जुमला फेलिया आए तो वो भी सिफत बनता है क्योंकि जुमला नकेरा के हुक्म में। एक जुमले के अंदर चाहे 20 मारिफा हो लेकिन जब वो जुमला बन जाएगा तो वो नकेरा है, वो क्या है, नकेरा। तो यहां पर भी मुर्तहिनुन नकेरा आया और उसके बाद माहू रहनुन पूरा जुमला इस्मिया आया, और जुमला इस्मिया किसके हुक्म में, वो नकेरा है, तो गोया नकेरा के बाद नकेरा आ गया, और नकेरा के बाद नकेरा है तो वो उसकी सिफत बनता है। और मौसूफ सिफत का तर्जमा कैसे करते हैं, मौसूफ से पहले ऐसा या ऐसी का लफ्ज लाते हैं, तो यहां पर भी इसी तरह होगा। और वला मुर्तहिनु माहू रहनुन, और ना ही मुकल्लफ बनाया जाएगा ऐसे मुर्तहिन को, माहू रहनुन जिसके पास रहन है यानी उसके कब्जे में है। पहले तो था ना आदिल आदमी के पास, और ना ही मुकल्लफ बनाया जाएगा ऐसे मुर्तहिन को जिसके पास रहन है किस चीज का। कहते हैं तमकीन हो कि वो कुदरत दे दे मिन बैई ही उस रहन के बेचने की, हत्ता यकजिया दैन हो, यहां तक कि वो उसका दैन उसे अदा कर दे। सूरत मसला ये याद रखो, ये जो रहन है आपने किसी के पास रखवाया है तो वो मुर्तहिन के कब्जे में है, अब अगर आप इसको बेचना चाहते हैं तो बेचने की इजाजत नहीं है, क्योंकि इस गाड़ी के साथ अब मुर्तहिन का हक वाबस्ता है, उसने इस गाड़ी के जरिए अपना कर्जा वसूल करना है, लिहाजा राहिन मुर्तहिन की इजाजत के बगैर रहन को नहीं बेच सकता। हां अगर बेच भी देता है तो यह बै मौकूफ होगी मुर्तहिन की इजाजत पर, अगर मुर्तहिन इजाजत देगा तो बै हो जाएगी, अगर वो इजाजत नहीं देगा तो बै नहीं हुई। अब सूरत मसला यह कि राहिन जो है उसने गाड़ी रखवाई है मुर्तहिन के पास, अब राहिन उस गाड़ी को बेचना चाहता है तो क्या काजी उसको हुक्म देगा कि इसको गाड़ी बेचने दो? भाई देखो ना, अभी मैंने बताया जब रहन किसके कब्जे में है, मुर्तहिन के, तो राहिन बेच सकता है उसको नहीं, बल्कि किसकी इजाजत जरूरी, मुर्तहिन की। अब मुर्तहिन की इजाजत के बगैर वो बेच नहीं सकता, बेचता भी है तो उसकी इजाजत पर बेमौकूफ रहती है, तो क्या काजी मुर्तहिन को मजबूर कर सकता है, काजी मुर्तहिन को हुक्म दे सकता है शरान कि तुम इसको इस रहन को बेचने दो, ये अपनी गाड़ी बेचना चाहता है इसको बेच? कहते हैं नहीं भाई, काजी उसको इसका मुकल्लफ नहीं बना सकता, इस पर हुक्म काजी नहीं दे सकता। बात समझ में आ? जब तक ये उसका पूरा कर्जा अदा न कर दे, जब जैद आमर का पूरा कर्जा अदा कर देगा फिर वो बेच सकता है। बात समझ में आ गई? तो ये माना है वला मुर्तहिन माहू रहनुन, और ना ही मुकल्लफ बनाया जाएगा यानी हुक्म दिए, और ना ही हुक्म दिया जाएगा ऐसे मुर्तहिन को जिसके पास रहन है तमकी न हो कि वो कुदरत दे दे, कि वो राहिन को कुदरत तमकी न हो कि वो राहिन को कुदरत दे दे मिन बैई ही उस रहन को बेचने की, इसका मुकल्लफ इसको नहीं बनाया जाएगा, इसका हुक्म इसको नहीं दिया जाएगा। हत्ता यकजिया दैनहु, यहां तक कि वो राहिन इसका दैन इसको अदा कर दे, जब वो दैन अदा कर देगा फिर इसको मुकल्लफ बनाया जा सकता है, फिर उसके बाद वो चीज को बेच सकता है। सूरत समझ में? मालूम हुआ काजी हुक्म नहीं दे सकता, कब तक?
जब तक वो दैन अदा करे।
गोया आदम में तकलीफ रहेगी, यानी मुकल्लफ नहीं बनाया जा सकता। आदम का माना नहीं, आदम में तकलीफ रहेगी यानी मुकल्लफ नहीं बनाया जा सकता। ये है मुगैया, ये क्या है? मुगैया जिस चीज की हद बयान की जाए, और जो हद है उसको कहते हैं गाया। जैसे वुजू के अंदर क्या हुक्म दिया गया, अपने हाथों को धो कहां तक? कोहनियों तक। तो हाथ जो है जिनकी हद बयान हो रही है वो हुए मुगैया, और जो कोहनी है वो क्या है? गाया। तो यहां पर भी इसी तरह है, आदम में तकलीफ यानी उसको मुकल्लफ न बनाना, ये कब तक रहेगा? जब तक कर्जा अदा न कर दिया जाए। तो आदम में तकलीफ हुई मुगैया, और अदाए देन क्या हुआ? कजाए देन क्या है? गाया। जब गाया आएगी फिर ये आदम में तकलीफ खत्म हो जाएगी। तवज्जो है? जब गाया आएगी तो आदम में तकलीफ खत्म। फिर सुनो, उसको तकलीफ नहीं, उसको मुकल्लफ नहीं बनाएंगे। कब तक मुकल्लफ नहीं बनाएंगे?
जब तक
उस राहिन उसका कर्जा अदा न कर दे। तो देखो आदम में तकलीफ है मुगैया, इसको मुकल्लफ नहीं बना सकते, इसको हुक्म नहीं दे सकते, लेकिन ये हुक्म नहीं दे सकते, ये वाले कब जाकर खत्म होगी ये वाली बात?
जब वो कर्जा अदा करेगा।
अब आदम में तकलीफ खत्म हो गई, अब उसको हुक्म दिया, अब मुकल्लफ बना सकते हैं, अब तकलीफ दे सकते हैं, अब हुक्म दे सकते हैं। तो देखा, तो आदम में तकलीफ क्या? मुगैया, और इसकी गाया क्या? अदाए देन, कजाए देन। तो और जब कजाए देन आ जाएगी तो आदम में तकलीफ खत्म, फिर क्या? फिर तकलीफ यानी मुकल्लफ बनाया जा सकता है, फिर हुक्म दिया जा सकता है। देखिए भाई, अला युकल्लफ मुर्तहिनुन माहू रहनुन, मुकल्लफ नहीं बनाया जाएगा ऐसे मुर्तहिन को जिसके पास रहन है। अय्युमक्किना राहिना मिन बैर रहनी, कि वो कुदरत दे दे राहिन को, रहन को बेचने की। सुम्मा हाजल हुक्मु, फिर ये वाला जो शरई हुक्म है, ये हुक्म कौन सा हुक्म? वह हुआ आदम तकलीफ इल मजकूरी, वो जो आदम तकलीफ जिसको जिक्र किया गया कि इसको हुक्म नहीं दिया जा सकता, इसको मुकल्लफ नहीं बनाया जा सकता, ये वाला जो हुक्म है मुगैन, ये मुगैया है इला कजा इदैन, कब तक? कजाए देन तक। जब कजाए देन हो जाएगा तो फिर ये भी खत्म, फिर हुक्म दिया जा सकता है। बात समझ में आ गई? वला मन कुजिया बाजू दैनी ही तस्लीम बाजी रहनी ही हता यकबिजल बकियता। सूरत ये, जैद ने बतौर रहन के आपके पास गंदुम की 100 बोरियां रखवा दी, 100 बोरियां, और आपसे 10 लाख रुपए उसने कर्जा ले लिया। और कितनी बोरियां आपके पास? 100 बोरियां गंदुम की आपके पास उसने रखवा दी बतौर रहन के। अब उसने 10 लाख में से 9.5 लाख कर्जा आपको अदा कर दिया। अब वो काजी के पास जाता है, काजी साहब मैंने 10 लाख में से 9.5 लाख तो अदा कर दिया है, अब इसको हुक्म दें कि ये मेरा वो रहन वापस नहीं कर रहा, तो रहन नहीं वापस कर रहा, तो जितने की मैं कर्जा अदा कर चुका हूं उतनी बोरियां तो मुझे वापस कर दे, उतनी बोरियां तो मुझे वापस कर दे। 100 बोरियां रखवाई थी, अब कम से कम 95 बोरियां तो मुझे ये वापस कर दे। कहते नहीं भाई, जब तक वो सारा कर्जा वसूल नहीं कर लेता तब तक काजी उसको हुक्म नहीं दे सकता कि कुछ रहन को क्या कर दो, हाजिर कर दो, इसको सुपुर्द कर दो। सूरत समझ में आ गई? ये मानना है वला मन कुज या बाजू देनी ही, और ना ही मुकल्लफ बनाया जा सकता है। मन, मन से मुराद यहां मुर्तहिन है, और ना ही मुकल्लफ बनाया जा सकता है उस मुर्तहिन को। कुज या बाजू देनी ही, जिसके कुछ देन को अदा कर दिया गया उसको मुकल्लफ नहीं बनाया जा सकता। किस चीज का? कि तस्लीम बाजी रहनी ही, कि वो कुछ रहन को सुपुर्द कर दे, कुछ बोरियां हवाले कर दे, इसका मुकल्लफ उसे नहीं बनाया जा सकता। हत्ता यकबिजल बकियता, यहां तक कि वो बाकी के देन पर भी कब्जा कर ले। जब बाकी देन पर कब्जा कर लेगा अब उसको हुक्म दिया जाएगा कि रहन सुपुर्द कर दो। अला युकल्लफु मुर्तहिनुन, मैंने बताया था भाई मन से कौन मुराद है? मुर्तहिन। देखो शरा में उसको मन की जगह मुर्तहिन ले आए। अला युकल्लफु मुर्तहिनुन, मुकल्लफ नहीं बनाया जाएगा ऐसे मुर्तहिन को। कुजिया बाजू देनी ही, जिसके कुछ देन को अदा कर दिया गया उसको मुकल्लफ नहीं बनाया जाएगा, यानी उसको हुक्म नहीं दिया जाएगा। तस्लीम बाजी रहनी ही, कि वो कुछ रहन सुपुर्द कर दे, हवाले कर दे। 9.5 लाख वसूल कर लिया तो उसके बकदर रहन भी क्या कर दो, सुपुर्द कर दो, यह हुक्म उसको नहीं दिया जाएगा। सुम्मा हाजल हुक्म, फिर ये वाला जो हुक्म है वह हुआ आदम तकलीफ इल मजकूरी, ये जो आदम तकलीफ जो जिक्र हुई ये मुगैया है इला कब्ज बकियती देन, बाकी देन के कब्जे तक। इबारत समझ में आ रही है? क्या कहा? वो शख्स जिसके कुछ कर्जे को अदा कर दिया गया, काजी उसको यह हुक्म नहीं दे सकता कि वो कुछ रहन अदा कर दे, कुछ रहन सुपुर्द कर दे, जब तक कि वो अपना बाकी कर्जा वसूल न कर। मालूम हुआ काजी उसको हुक्म नहीं दे सकता, मुकल्लफ नहीं बना सकता। ये आदम तकलीफ कब तक रहेगी? जब तक वो बाकी का कर्जा पर कब्जा नहीं कर ले। जब बाकी कर्जे पर कब्जा कर लेगा अब उसको हुक्म दिया जा सकता है। सूरत समझ में आ गई? ये माना है कि सुम्मा हाजल हुक्म, फिर ये वाला जो हुक्म है वह हुआ आदम तकलीफ इल मस्कूरी, ये जो आदम तकलीफ जो जिक्र की गई ये मुगैन इला कब्ज बकियती दैनी, ये मुगैया है बाकी के देन पर कब्जे तक। जब वो गाया आएगा तो फिर आदम तकलीफ खत्म हो जाएगी, फिर उसको हुक्म दिया जा सकता है। वल्लहू हिफ्जुहू बिनफ्सिही व अयालिही। भाई याद रखो, मुर्तहिन रहन की हिफाजत खुद भी कर सकता है और अपने बीवी बच्चों और घर में रहने वाले खादिम के जरिए भी करवा सकता है। घर में रहने वाले जो उसके घर में रहने वाले अफराद हैं उनके जरिए भी हिफाजत करवा सकता है। लिहाजा लिहाजा एक आदमी ने अपनी हीरे की अंगूठी दूसरे शख्स के पास बतौर रहन के रखवा दी और फिर वो आदमी वो हीरे की अंगूठी उसने अपनी बीवी के सुपुर्द कर दी या अपने बच्चे जो संभाल जो हिफाजत कर सकते थे उनके हवाले की कि इसको संभाल कर रखो या अपने घर के मुलाजिम के सुपुर्द की कि इसको संभाल कर रखना उनके हवाले उसने कर दी और फिर वो अंगूठी चोरी हो गई तो क्या राहिन काजी के पास जाकर मुतालबा कर सकता है कि काजी साहब अंगूठी तो मैंने इसके हवाले की थी, इसने अपने घर वालों के सुपुर्द क्यों की, इसने ज्यादती की है, लिहाजा मुझे पूरा जमान दिलवाया जाए, पूरा अब अकल को न देखा जाए बल्कि मुझे पूरा जमान दिलवाया जाए, तो क्या वो ये मुतालबा कर सकता है कि ये बात ठीक है? कहते हैं नहीं भाई, आदमी अपने जरिए खुद भी हिफाजत कर सकता है उस चीज की और अपने बीवी बच्चों और घर के खादिम के जरिए भी करवा सकता है। भाई क्यों? उसने तो इस जैद पर एतमाद किया है, उसके घर वालों या बीवी बच्चों पर तो एतमाद नहीं। कहते हैं भाई आदमी अपनी चीजों की हिफाजत भी तो बीवी बच्चों और खादिमों के जरिए करवाता है, हर चीज अपने साथ लेकर तो नहीं घूमता, तो अपने पास रखे तो भी ठीक, अपने बीवी बच्चे या खादिम के जरिए हिफाजत करवाए जो उसके घर में रहता है तो भी ठीक है, ये कोई तादी और ज्यादती नहीं है क्योंकि आदमी अपनी चीजों की हिफाजत भी इन्हीं के जरिए करवाता है। यह माना है व लहू हिफ्जुहू बिनफ्सिही व इयालिही, और मुर्तहिन के लिए जायज है कि वो रहन की हिफाजत करे बिनफ्सिही खुद भी व इयालिही और अपने घर वालों के जरिए भी। इयाल से मुराद वो लोग हैं जो उसके घर में रहते हों, चाहे नफका इस पर ना भी हो, चाहे ये नहीं माना कि खर्चा भी इस पर हो, न बस जो इसके घर में रहते हैं बीवी बच्चे हैं और इसके खादिम जो रहते हैं। हां अगर बच्चे बड़े हैं अलग रहते हैं फिर नहीं, फिर उनके पास अगर रखवाता है तो ये तादी है। बात समझ में आ गई? तो अयाल से कौन मुराद है वो खुद बयान कर रहे हैं, कस जाऊजती जैसे कि उसकी बीवी है, वल वलदी और उसकी औलाद है, वल खादिम अल्लज़ीन फी अयालिही और उसका वो खादिम जो उसके घर वालों में है, यानी ये सब क्या है उसके अयाल में है, इसकी बीवी और इसकी औलाद और खादिम जो कि इसके अयाल में है। वज़मीन बिहिफ़्ज़िही बिगैरिहिम और वो जामिन होगा बिहिफ़्ज़िही बिगैरिहिम इनके अलावा हिफाजत करवाने पर, इनके अलावा उसने अगर ये चीज किसी और से हिफाजत करवाई, वो बच्चे जो बड़े हैं जो अलग रहते हैं उनसे हिफाजत करवाई या किसी और आदमी के पास हिफाजत के लिए रखवा दी तो ये जायज नहीं, ये तादी है। ये माना वज़मीना बिहिफ़्ज़िही बिगैरिहिम और वो जामिन होगा इनके अलावा से हिफाजत करवाने पर, व ईदाई ही और इस ईदा का माना अमानत रखवाना, किसी के पास कोई चीज आपने उसको हीरे की अंगूठी दी थी उसने वो अंगूठी बकर के पास अमानत के तौर पर रखवा दी कि इसको महफूज रखना। कहते हैं भाई इस सूरत में भी ये तादी है। भाई तादी क्यों है? उसने अमानत के तौर पर रखवाई है हिफाजत के लिए। कहते हैं भाई हो सकता है राहिन का, राहिन ने जिसने इसको अंगूठी हवाले की है राहिन का इस पर तो एतमाद हो, तीसरे आदमी पर उसका एतमाद ना हो भाई। तो लिहाजा अगर वो जामिन होगा, अगर वो हिफाजत करवाए इनके अलावा किसी से, वह ईदाई ही और किसी के पास, ईदाई ही का आतफ है हिफ्ज़िही पर, भी हिफ्ज़िही व भी ईदाई ही, आगे भी इसी तरह है, व भी तादी ही व भी जाली ही। इबारत समझ में आ रही है? तो वो जामिन होगा इन सब सूरतों में अगर इनके अलावा किसी से हिफाजत करवाई, व ईदाई ही और उसने अमानत रखवाई किसी के पास, व तादी ही और इसने उसमें कोई ज्यादती की, अगर उसमें कोई ज्यादती की तब भी जामिन होगा, व जाली ही खातमर रहनी फी खिनसरी ही और वो जामिन होगा अगर वो इसको बना देता है, क्या बनाता है, वो बनाता है खातमर रहनी किसको, रहन की अंगूठी को वो बना देता है, कर देता है, कर देता है फी खिनसरी ही अपनी छोटी उंगली में, खिनसर ये हाथ की सबसे छोटी उंगली भाई, इसको खिनसर कहते हैं, तो अगर उसने कहते हैं इस रहन की अंगूठी को अपनी खिनसर में डाला तो इस सूरत में ये तादी है, तादी है और जमान आएगा। क्या आएगा? सवाल रहन का तो वैसे भी जमान आता है, फिर क्या माना कि वो जामिन होगा? भाई माना यह है कि आप पूरी कीमत का जामिन होगा। अब अकल को नहीं देखेंगे, अगर उसने किसी और से हिफाजत करवाई या किसी के पास अमानत रखवाई या कोई और तादी की या अंगूठी को अपने खिनसर में पहना, तो इन तमाम सूरतों में अब इस पर पूरा जमान आएगा। जाब्ता याद रखना भाई, ये क्या वजह है? खिनसर के अंदर अंगूठी को पहनने की सूरत में उस पर जमान आएगा। कहते हैं भाई एक है चीज की हिफाजत, एक है चीज का इस्तेमाल, ये जाब्ता है। अगर रहन को वो ऐसे रखता है जैसे इस्तेमाल की चीज रखी जाती है, तो फिर जामिन होगा। क्या होगा? और उस जमाने में होगा कि किस उंगली में मर्द अमूमन अंगूठी पहनते हैं, खिनसर में पहनते हैं या उसके साथ वाली जो है बिनसर? जी
बिनसर,
बिनसर में जी, बिनसर। तो हां, आजकल जैसे रिवाज है अंगूठी किसमें पहनी जाती है? बिनसर में, यानी सबसे छोटी उंगली के साथ वाली उंगली में। तो ये इस्तेमाल है, इसका मतलब है वो अंगूठी को इस्तेमाल कर रहा है, तादी कर रहा है, इसकी तो उसको इजाजत नहीं थी, लिहाजा उस पर जमान आएगा। और अगर मसलन वो इस अंगूठी को शहादत की उंगली में पहन लेता है, अब शहादत की उंगली में तो कोई अंगूठी नहीं पहनी जाती भाई, तो मालूम हुआ वो सिर्फ हिफाजत के तौर पर अपने साथ रखी हुई है, उसने जीनत के लिए उसने नहीं पहनी हुई। सूरत समझ में आ गई? लिहाजा जो भी चीज रहन किसी को रख दें, अगर वो उसको अपने साथ साथ रखता है इस तरीके पर कि जैसे कोई चीज इस्तेमाल की जाती है, फिर तो वो तादी है। अगर उसके अलावा तरीके पर वो अपने साथ रखता है, तो फिर इस सूरत में ये तादी नहीं है, फिर इस सूरत में वो हिफाजत के लिए अपने साथ उसने रखी हुई है। तो लिहाजा वजा अली ही खातमर रहनी फी खिनसरी ही, और वह जामिन होगा रहन की अंगूठी को अपनी खिनसर में डालने से, ला बिजा अली ही फी इस बाइन आखर किसी दूसरी उंगली में डालने से वो जामिन नहीं होगा। फैन न जा लहू फिल खिनसर इस्तेमाल, इसलिए क्योंकि उसका अंगूठी को खिनसर में डालना, खिनसर में करना इस्तेमाल, ये क्या है? इस्तेमाल। वजालहू फी इसबाइन आखरा ला, और दूसरी उंगली में इसको डालना ये इस्तेमाल नहीं है। लिहादमिल आदती, क्योंकि इसकी आदत नहीं, लोग इस की आदत, तो इसमें आदत को देखा जाएगा। बल हुआ मिन बाबिल हिफ्जी, बल्कि ये हिफाजत के बाब से है। अगर उसने दूसरी उंगली यानी शहादत की उंगली में डाला है, मालूम हुआ वो हिफाजत करना चाहता है, जीनत के लिए उसे नहीं पहनी। तो बहरहाल इसमें लोगों की आदत को देखा जाएगा कि वो अंगूठी को किस उंगली में पहनते हैं, तो इसका दारोमदार लोगों की आदत पर है। जी, बात समझ में आ गई, सूरत अच्छी तरह समझ में आ गई। चलिए बस भाई, हादा हुआ अल मराम, अल्लाहु आलम बिहकीकतिल कलाम।